डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट लिटरेचर, व्याख्यान 11, जॉन और दृष्टांत। 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर डेव मैथ्यूसन जॉन और दृष्टांतों पर न्यू टेस्टामेंट इतिहास और साहित्य व्याख्यान 11 प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें और फिर मैं जो करने की आशा करता हूं वह व्यक्तिगत सुसमाचारों पर हमारी चर्चा को समाप्त करना है। हम बहुत जल्दी जॉन को देखेंगे। फिर मैं बस कुछ ऐसी चीजों पर प्रकाश डालने की आशा करता हूं जो सिनोप्टिक गॉस्पेल मैथ्यू, मार्क और ल्यूक की तुलना में इसके बारे में विशिष्ट हैं। और फिर मैं यीशु की शिक्षा के विशिष्ट रूपों में से एक दृष्टांत के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। मैं बस इस बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं कि हम परवल्यक साहित्य को कैसे पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। हम यीशु के दृष्टांतों को कैसे समझें और पढ़े? वे कौन सी साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रकार के थे? और यह हमारे उन्हें पढ़ने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है? और फिर शुक्रवार को हम उम्मीद है कि शुक्रवार तक हम सभी सुसमाचारों को एक साथ रखने का काम पूरा कर लेंगे। हम यीशु के बारे में क्या सीखते हैं? सुसमाचार इस बात पर किस बात पर जोर देते हैं कि यीशु कौन है और हमें उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए और यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो आइए प्रार्थना से शुरू करें और फिर हम जॉन के सुसमाचार चौथे सुसमाचार को देखेंगे। पिता, हम अंतर्दृष्टि और ज्ञान की मांग करते हैं क्योंकि हम नए नियम के कुछ हिस्सों पर बहुत संक्षेप में और बहुत तेजी से विचार करते हैं। भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम इसे और अधिक गहन समझ के साथ दोबारा पढ़ने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। हम आपके पुत्र यीशु मसीह को उस तरह से आज्ञाकारिता में जवाब देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे जिस तरह से पवित्र शास्त्र अपने पाठकों से हमें बुलाता है। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, चौथा सुसमाचार, जिसे प्रिय शिष्य का सुसमाचार भी कहा जाता है। और फिर मुझे यकीन है कि वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था, लेकिन नहीं, आप में से कुछ लोग इसे चौथे सुसमाचार के कथित लेखक के प्रतीक के रूप में पहचान सकते हैं। अब पहला प्रश्न, हम उस वाक्यांश के बारे में बात करेंगे, लेखक या शिष्य, प्रिय शिष्य, वह शिष्य जिसे यीशु ने एक पल में प्यार किया था। लेकिन प्रारंभिक बिंदु नोट करना है और हम बाद में लौटेंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन सबसे पहले अलग अलग अंतरों पर ध्यान दें। हालांकि उन्हें अतिरंजित, अति अतिरंजित और अतिरंजित नहीं किया जाना चाहिए, अनुमानित, लेकिन आप मदद नहीं कर सकते। लेकिन जॉन चौथे गॉस्पेल और पहले तीन तथाकथित सिनोप्टिक गॉस्पेल के बीच स्पष्ट अंतर को नोटिस कर सकते हैं क्योंकि उन्हें एक साथ देखा जाना चाहिए, उनका एक साहित्यिक संबंध है। लेकिन जॉन बिल्कुल अलग नजर आते हैं। वास्तव में वह इतना अलग था कि शुरुआती ईसाई अक्सर जॉन के गॉस्पेल को अधिक आध्यात्मिक गॉस्पेल या चार गॉस्पेल के अधिक धार्मिक सुसमाचार के रूप में संदर्भित करते थे। और आप देख सकते हैं कि यह बात सच हो सकती है। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि मैथ्यू, मार्क और ल्यूक धार्मिक नहीं हैं, लेकिन जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो आप जानते हैं यह मैथ्यू, मार्क और ल्यूक है। यह लगभग वैसा ही है जैसे आपको लगता है कि आप अधिक गहराई से जुड़े हुए हैं इतिहास। जब आप जॉन के पास पहुंचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें और भी रहस्य है, और यह उतना सीधा नहीं है जितना आप मैथ्यू, मार्क और ल्यूक में पाते हैं। फिर इसका मतलब यह नहीं है कि मैथ्यू, मार्क और ल्यूक धार्मिक नहीं हैं। वे हैं, लेकिन जब आप जॉन को पढ़ते हैं तो आपको एक स्पष्ट एहसास होता है कि आप कुछ बहुत अलग पढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए एक बात जो आपने नोटिस की है, हालांकि कुछ ओवरलैप है, अधिकांश भाग के लिए आपको जॉन में मिलने वाली अधिकांश सामग्री मैथ्यू, मार्क और ल्यूक में नहीं मिलती है। इसके अलावा शब्दावली भी बहुत अलग है। लेकिन जब जॉन यीशु से बात करता है या बोलता है या उपदेश देता है तो वह उसे इस तरह से बात करने के लिए कहता है जो आपको सिनॉप्टिक गॉस्पेल में नहीं मिलता है। तो हम पूछेंगे, शायद कम से कम बहुत संक्षेप में पता लगाएं कि जॉन अन्य तीन गॉस्पेल से इतना अलग क्यों हो सकता है। लेखक कौन थे? फिर अन्य तीन गॉस्पेल की तरह चौथा गॉस्पेल पूरी तरह से गुमनाम है, अर्थात सुसमाचार में कहीं भी लेखक हमें यह नहीं बताता कि वह कौन है। आपको जो एकमात्र संकेत मिलता है वह उस शिष्य का संदर्भ है जिसे यीशु प्यार करते थे, या प्रिय शिष्य, या प्रिय शिष्य। इसलिए मेरा शीर्षक प्रिय शिष्य का सुसमाचार। फिर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि चौथा सुसमाचार, इस बात पर बहुत अधिक बहस हुई है कि वास्तव में इसे किसने लिखा है। फिर से परंपरा ने जॉन नाम को चौथे गॉस्पेल से जोड़ दिया है, हालांकि समस्या यह है कि पहले के कुछ चर्च पिताओं ने, जिन्होंने जॉन के लेखकत्व के बारे में लिखा था, चौथे गॉस्पेल के लेखकत्व के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है कि यह एक संदर्भ प्रतीत होता है, एक से अधिक जॉन। इसलिए हम निश्चित नहीं हो सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जॉन द एल्डर है। वहां एक संदर्भ है स्पष्ट रूप से जॉन द एपोस्टल, और इसलिए इस बात पर थोड़ी बहस चल रही है कि वास्तव में जॉन को किसने लिखा है। हालांकि परंपरागत रूप से जॉन यीशु के प्रेरित को लेने का अच्छा कारण रहा है, क्योंकि यह चौथे सुसमाचार के लेखकत्व का पारंपरिक दृष्टिकोण रहा है। इसलिए सुसमाचार के अनुसार हमारे आधुनिक अंग्रेजी अनुवादों में जॉन को, लेकिन फिर जॉन के अनुसार वह शीर्षक गॉस्पेल से बहुत पहले ही जुड़ गया होगा, लेकिन मूल रूप से लेखक ने इसे अपने गॉस्पेल के पहले पृष्ठ में नहीं लिखा था, लेकिन चर्च के इतिहास में बहुत पहले से ही इस सुसमाचार का श्रेय जॉन को दिया जाता था, और आमतौर पर इसका श्रेय जॉन यीशु प्रेरित को दिया जाता था जिसके बारे में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। अब इस किताब को लिखने का उद्देश्य क्या है? अन्य गॉस्पेल के विपरीत जॉन वास्तव में बाहर आता है और हमें बताता है अपने गॉस्पेल के बिल्कुल अंत में अध्याय 20 और श्लोक 30 और 31 में कि जॉन तुरंत बाहर आता है और आपको बताता है कि उसने ऐसा क्यों लिखा। हालांकि यह थोड़ा व्यापक भी है, इसके भीतर और भी विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं या विशिष्ट तरीके हो सकते हैं जिनसे वह अपना उद्देश्य पूरा करता है। लेकिन शुरू करते हुए यह अध्याय 20 श्लोक 30 है, अपने सुसमाचार के बिल्कुल अंत में लेखक कहते हैं, अब यीशु ने अपने शिष्यों की उपस्थिति में कई अन्य संकेत दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। फिर यह आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सुसमाचार लेखकों ने कैसे लिखा, यीशु ने क्या कहा और क्या किया। इस बारे में उनके पास बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन उनमें यह सब शामिल नहीं था, और जॉन हमें यह बताता है। उन्होंने कहा, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह दिखाए थे जिन्हें मैंने इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया है। क्यों? खैर, हो सकता है कि उसके पास जगह खत्म हो गई हो, लेकिन हो सकता है कि वह चयनात्मक हो रहा हो। वह उन चीजों का चयन कर रहा है जो बताती हैं कि वह यीशु के बारे में क्या कहना चाहता है। और फिर वह आगे कहता है, परंतु ये बातें जो लिखी गई हैं, ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि तुम विश्वास कर लो कि यीशु ही मसीहा परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करने के द्वारा तुम उसके नाम पर जीवन पा सकते हो। तो जॉन हमें बताता है कि इन सभी कहानियों को पाठकों को यह विश्वास दिलाने के लिए शामिल किया गया है कि यीशु वास्तव में मसीहा है, और उस पर विश्वास करने पर उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। यीशु के नाम पर विश्वास करके उन्हें जीवन मिलेगा। और वास्तव में शाश्वत जीवन शब्द बहुत आम है, जैसा कि हम जॉन में एक क्षण में देखेंगे। तो मैं संक्षेप में बताऊंगा, शायद जॉन के लिखने का उद्देश्य यह है कि वह न केवल विश्वास पैदा करना चाहता है बल्कि अपने पाठकों में विश्वास को मजबूत करना चाहता है ताकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि यीशु वास्तव में वही मसीहा है जिसके बारे में उसने कहा था कि वह था, और इसलिए उस पर अपना विश्वास मजबूत करें ताकि वे उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें जो यीशु ने अपने लोगों के लिए पेश किया था। यह भी संभव है कि जॉन में भी एक इंजिलवादी उद्देश्य हो कि वह अपने ईसाइयों को उनके क्षमायाचना और शायद यहूदियों और गैर ईसाई यहूदियों के साथ उनके इंजिलवादी प्रयासों के लिए सामग्री प्रदान कर रहा हो। यह भी संभव है। यूहन्ना का एक जोर इस तथ्य पर है कि यीशु विजयी हुआ, उसने विजय प्राप्त की। छंदों को याद रखें जैसे मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है, जो फिर से सुझाव देता है कि जॉन को मजबूत करने के लिए लिखा गया था ताकि पाठकों को यीशु मसीह में अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा सके ताकि वे उस शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकें जिसका यीशु ने वादा किया था। अब मैं फिर से जो करना चाहता हूँ वह यह है कि मैं बहुत तेजी से जॉन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता हूँ और आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह मैथ्यू, मार्क और ल्यूक से कैसे विशिष्ट और अलग है। सबसे पहले पहला प्रारंभिक बिंदु जॉन अध्याय एक और पहले 18 छंदों से है। पहले 18 छंद एक अर्थ में एक प्रस्तावना प्रदान करते हैं। वास्तव में उन्हें शेष सुसमाचार को एक साथ रखने के बाद भी लिखा गया होगा। लेखक इसका उपयोग एक प्रकार से यह परिचय देने के लिए करता है कि वह कैसे चाहता है कि आप उसके शेष सुसमाचार को पढ़े। तो जॉन एक और पहले 18 छंद इस तरह की प्रस्तावना इसके परिचय के साथ शुरू होती है। शब्द शुरू होता है शुरुआत में। जो दिलचस्प बात यह है कि वह वाक्यांश उत्पत्ति अध्याय एक को याद करता है। शुरुआत में भगवान ने स्वर्ग और बनाया धरती। अब आपके पास आरंभ में वचन था और यह शब्द स्पष्ट रूप से यीशु मसीह को संदर्भित करता है। और हम शब्द की उस भाषा के बारे में बात करेंगे, लेकिन यह आगे बढ़ता है और कहता है शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। यह इस बारे में बात करता है कि कैसे शब्द को बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन यह शब्द शब्द भी देहधारी बन गया। जॉन की क्रिसमस कहानी के संस्करण अध्याय एक श्लोक 14 में यह एक इंसान बन जाता है। यह वचन जो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर था अब देहधारी हो गया है और अपने लोगों के बीच रहता है। तो यह जॉन के सुसमाचार का एक प्रकार से परिचय है। अब इस प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण है वह यह है। सबसे पहले यीशु को इस शब्द से बुलाया या लेबल किया गया है और हम इसके बारे में अधिक बात करेंगे, लेकिन शब्द या लोगों के पीछे का विचार प्राथमिक जोर यीशु पर है जो ईश्वर को प्रकट करता है। तो शब्द या लोगों से पता चलता है वास्तव में यह एक शब्द था, जैसा कि हम देखेंगे शायद पुराने नियम से आया था। शब्द लोगो या शब्द भगवान के भाषण या भगवान के बोलने को संदर्भित करता है, लेकिन अन्य संभावित संघ भी थे, लेकिन यह शब्द स्पष्ट रूप से यीशु मसीह को संदर्भित करता है और जॉन स्पष्ट रूप से इस शब्द को स्वयं भगवान के साथ पहचानता है। जॉन, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, चार सुसमाचारों में से जॉन सबसे स्पष्ट रूप से यीशु मसीह शब्द की पहचान स्वयं ईश्वर से करता है और वह शुरुआत में ही ऐसा करता है। तो यीशु शब्द भाषण भगवान का प्रवचन है और यह शब्द पद 14 में भगवान के साथ पहचाना जाता है और देह बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान बन जाता है। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है दूसरा बिंदु यह है कि यह शब्द कौन ईश्वर था और अब जो देह धारण करता है एक इंसान है, इसलिए ईश्वर को प्रकट करने के लिए उपयुक्त है या वह है जो ईश्वर को प्रकट करता है। और फिर शायद इसीलिए जॉन ने लोगो या वर्ड शब्द चुना क्योंकि वह इस बात पर जोर देना चाहता है कि यीशु ईश्वर का आत्म प्रकाशन है। यीशु ही इस बात का रहस्योद्घाटन है कि ईश्वर कौन है। तो अध्याय एक में इस प्रस्तावना के अंतिम श्लोक में अध्याय एक श्लोक 18 यह कहता है, किसी ने कभी भी पिता परमेश्वर पिता को नहीं देखा है। यह पुराने नियम से निकलता है। यह आपको कई जगहों पर मिलता है। किसी ने पिता को नहीं देखा, परंतु यूहन्ना कहता है, केवल एकलौते को छोड़ यह वचन जो उसे प्रकट करता है। तो यह ऐसा है मानो जॉन कह रहा हो, ईश्वर को उससे बेहतर कौन बता सकता है जो ईश्वर भी है, लोगों जो ईश्वर है, लेकिन जो अब श्लोक 14 में एक इंसान बन गया है। इसलिए क्योंकि वह एक ही समय में भगवान और मनुष्य दोनों हैं, यीशु प्रकट करने, पूरी तरह से प्रकट करने और प्रकट करने में सक्षम है कि भगवान कौन है। यह लगभग वैसा ही है जैसे जॉन कह रहा हो, यदि आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर कैसा दिखता है तो आप यीशु मसीह को देखें, क्योंकि यीशु शब्द हैं, क्योंकि वह ईश्वर हैं, वह अब यह प्रकट करने के लिए सुसज्जित हैं कि ईश्वर कौन है। और इसलिए अदृश्य भगवान, फिर से, किसी ने भी भगवान पुराने नियम को नहीं देखा है। अदृश्य ईश्वर अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में दृश्यमान हो गया है, जो देहधारी हो गया था, जो स्वयं ईश्वर था, लेकिन अब अध्याय एक श्लोक 14 में देह बन गया है। इसलिए अध्याय एक में पहले 18 छंदों में यह प्रस्तावना है, इस खंड में यीशु एक अर्थ में ईश्वर और मानवता के बीच सेतु का काम करते हैं। फिर वह वही है जो ईश्वर है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, लेकिन अब श्लोक 14 में यह शब्द देह बन गया है। इसलिए यीशु मसीह शब्द ईश्वर और मानवता के बीच की दूरी को पाटता है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कर सकता है, वह एक ही समय में ईश्वर और मानवता दोनों है, यह शब्द जो अब देह बन गया है। तो इस प्रकार एक अर्थ में जॉन चाहता है कि हम शेष सुसमाचार पढ़े। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अब से जब भी हम सुसमाचार में यीशु से मिलेंगे, हम उसे ईश्वर के रहस्योद्घाटन, ईश्वर के प्रकटीकरण और भाषण के रूप में समझेंगे, फिर भी एक ही समय में जो एक के रूप में है, मनुष्य अपने लोगों के सामने ईश्वर को पूरी तरह प्रकट और प्रकट करता है और ईश्वर और मानवता के बीच की दूरी को पाटता है। साथ ही पहले 18 छंदों में आप पाते हैं कि यीशु के प्रति संभावित प्रतिक्रियाएं पहले से ही निर्धारित हैं। यह कहता है, परमेश्वर यीशु वचन देहधारी हुआ, वह जगत में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे अस्वीकार कर दिया। परंतु फिर वह आगे कहता है, परंतु जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी संतान कहता है। जो लोग उनमें विश्वास करते हैं, उन्हें ईश्वर के पुत्र या संतान कहलाने का अधिकार है। इसलिए यीशु के प्रति अलग अलग प्रतिक्रियाएं, जिन्हें हम बाकी सुसमाचारों में पढ़ेंगे, प्रस्तावना में पहले से ही चिह्नित हैं। तो प्रस्तावना हमें लगभग वह सब कुछ बताती है जो हमें सुसमाचार के बाकी हिस्सों को पढ़ने के बारे में जानने की जरूरत है, विशेष रूप से यीशु कौन है और वह ईश्वर को प्रकट करने वाले के रूप में कैसे कार्य करेगा, वह जो ईश्वर है, जो एक इंसान बन जाता है, जो दृश्य रूप में प्रकट करता है कि ईश्वर कौन है और जिसे विश्वास और आज्ञाकारिता की प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। अब कई प्रमुख अंश हैं जो मैं फिर से आपको यह संकेत देना चाहता हूं कि जॉन में क्या विशिष्ट है। फिर मेरा इन अंशों के बारे में अधिक विस्तार से बात करने का इरादा नहीं है। पहला मुख्य पाठ जिसे शायद आप में से अधिकांश लोग पहचानते हैं, वह अध्याय 3 है। अध्याय 3 एक कहानी है जहां एक आदमी निकोडेमस नाम का एक फरीसी रात में यीशु के पास आता है और उससे सवाल करता है और उससे पूछता है कि यीशु क्या सिखा रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है। तो यह निकोडेमस के प्रश्न के उत्तर में यीशु की एक लंबी शिक्षा बनकर समाप्त होती है। और निःसंदेह आप इस अंश को पहचानते हैं। यह वह जगह है जहां प्रसिद्ध जॉन 3:16 पाया जाता है, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपने बेटे को दिया। यह निकुदेमुस के उस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि यीशु कौन है और वह क्या कर रहा है। तो अध्याय 3 को पहचाने, फिर आपको यह किसी अन्य सुसमाचार में नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु रात में एक फरीसी का सामना करते हैं या उसका सामना करते हैं और उसके साथ बातचीत में प्रवेश करते हैं, एक आदमी निकोडेमस नाम का एक फरीसी। अध्याय चार उस सामरी महिला की कहानी है जो यीशु से एक कुएं पर मिलती है, या यूं कहें कि यीशु उस सामरी महिला से एक कुएं पर मिलते हैं। और आप में से अधिकांश लोग कहानी अच्छी तरह से जानते हैं। मूल रूप से सामरी महिला अंततः यीशु के प्रति विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करती है, लेकिन उम्मीद है आपको यह समझ में आ जाएगा कि न केवल उस दिन यीशु के लिए इस तरह की सेटिंग में एक महिला के साथ अकेले मिलना अनुचित था, बल्कि यह तथ्य भी था कि वह एक सामरी थी। और सबसे पहले यीशु सामरिया में क्या कर रहा था? कोई भी यहूदी जानता था कि आप उस स्थान से बचते हैं। तो अध्याय 4, कुएं पर सामरी महिला। आपके नोट्स में मैं अगले भाग अध्याय 6 को छोड़ दूंगा और सीधे अध्याय 14-17 तक चला जाऊंगा। अध्याय 14-17 यीशु का काफी लंबा प्रवचन है। फिर यह आपको किसी भी अन्य सुसमाचार में नहीं मिलता है। यह यीशु के अंतिम निर्देश हैं। उनके अंतिम निर्देश की तरह यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने और उसके कुछ देर बाद मौत की सजा देने से पहले अपने शिष्यों के साथ उनकी आखिरी रात के उनके आखिरी शब्द। तो अध्याय 14-17 एक काफी लंबा प्रवचन या खंड है जिसमें यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं, जिसे अक्सर ऊपरी कमरे का प्रवचन कहा जाता है, जहां यीशु अपने शिष्यों के साथ फसह मनाने के लिए ऊपरी कमरे में मिलते थे और फिर वह उन्हें सिखाने के लिए उस अवसर का लाभ उठाते हैं। लंबाई में अंत में अध्याय 21, एक तरह से हमने सिर्फ अध्याय 20 और श्लोक 30 से 31 तक पढ़ा है, जहां जॉन हमें बताता है कि वह क्यों लिख रहा है। मैंने ये बातें इसलिए लिखी हैं ताकि आप जान सकें और विश्वास कर सकें कि यीशु ही मसीह है, और विश्वास करने पर आप उसके नाम पर जीवन पा सकते हैं। अब यह सुसमाचार को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त स्थान होगा, लेकिन इसमें एक और अध्याय है और अध्याय 21 में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यह अपने शिष्यों के सामने यीशु के पुनरुत्थान की उपस्थिति को दर्ज करता है, लेकिन इस खंड में एक बहुत दिलचस्प कहानी है जहां पीटर को बहाल किया गया है। यीशु पतरस के सामने प्रकट हुए, और यदि आपको कहानी अच्छी तरह से याद है तो यीशु पतरस से क्या पूछते हैं? वह उससे यह बात 3 पूछता है। हां, यीशु ने पीटर से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और 3 पीटर ने उत्तर दिया, हां मैं करता हूं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1 भी यह पर्याप्त क्यों नहीं था? आपको क्या लगता है कि यीशु ने पतरस से 3 क्यों पूछा कि क्या वह उससे प्रेम करता है? क्योंकि उसने उसे 3 धोखा दिया। इसलिए मुझे लगता है कि उसने 3 यह पूछा कि क्या वह उससे प्यार करता है, भले ही पतरस ने 3 सही उत्तर दिया, लेकिन यीशु ने उससे 3 यह पूछा कि पतरस ने कितनी बार यीशु को अस्वीकार किया था। इसलिए अध्याय 21 को एक प्रकार के पतरस के रूप में देखा जा सकता है। यीशु को अस्वीकार करने के बाद अब पतरस को 3 यीशु के प्रति अपने प्यार को कबूल करके बहाल किया गया है, इस तथ्य के अनुरूप कि उसने पहले उसे 3 इनकार किया था। पुनः अध्याय 21 का अन्य सिनोप्टिक गॉस्पेल और अन्य 3 गॉस्पेल में कोई समानता नहीं है। जॉन की एक और अनूठी विशेषता जिसे आप अन्य गॉस्पेल में नहीं पाते हैं, उसे आईएम कहावते कहा जाता है। जहां यीशु कई कथन देते हैं, मैं हूं, और फिर मैं हूं का विधेय आमतौर पर किसी प्रकार का रूपक होता है। मैं द्वार हूं, मैं भेड़ हूं, मुझे क्षमा करो, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु रूपक के रूप में बोलते हैं और स्वयं को कुछ छवियों के साथ जोड़ते हैं। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि ये छवियां पुराने नियम से आती हैं और अक्सर स्वयं भगवान पर लागू होती थीं। तो एक लिहाज से ये मैं हूं कथन यीशु के देवता का कथन है। पुराने नियम में ईश्वर की विशेषताएं अब यीशु मसीह पर यह कहकर लागू की जाती हैं कि मैं चरवाहा हूं। खैर, पुराने नियम में ईश्वर इसराइल का चरवाहा था, या मैं प्रकाश हूं, जो स्पष्ट रूप से स्वयं ईश्वर का विशेषाधिकार था, आदि आदि। इसलिए उदाहरण के लिए ये आई एम कथन है। अध्याय 6 श्लोक 35 में यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। अध्याय 8 में, मैं संसार की ज्योति हूं। अध्याय 10, मैं द्वार हूं। मैं सच्चा द्वार हूं और मेरे बिना कोई प्रवेश नहीं करता। एक और, मैं अच्छा चरवाहा हूं, अध्याय 10। फिर मैं सिर्फ जॉन के पाठ के क्रम का पालन कर रहा हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। और आशा है अब आप समझ गए होंगे कि इन्हें रूपक के रूप में लिया जाएगा। यीशु स्पष्टतः एक ही समय में वस्तुतः ये सब नहीं हो सकते थे। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और अंततः मैं संसार की ज्योति हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो जॉन की विशिष्ट विशेषताओं में से एक ये आई एम कथन है। और फिर वे सभी यीशु कौन हैं और उनके मिशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता की पहचान करते हैं, और उनमें से अधिकांश शायद पुराने नियम में वापस चले जाते हैं, जहां भगवान का जिक्र करने वाली विशेषताएं हैं, अब यीशु खुद के लिए दावा करते हैं। तो मैं हूं कथनों की पहचान करने में सक्षम हो जाऊंगा। मुझे वास्तव में इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपको सटीक छंद मिले जहां वे घटित होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप जॉन के सुसमाचार में पाए जाने वाले इन 6 मैं हूं कथनों को जानने पहचानने में सक्षम हो सकते हैं। ओह, एक और है। मुझे माफ करें, मुझे पता था कि 7 थे, और वह जानबूझकर हो सकता है। मैं नहीं जानता कि 7 हैं, तो मैं ही सच्ची लता हूं। पुनः पुराने नियम में परमेश्वर दाखलता था और इज़राइल भी दाखलता था, लेकिन फिर यह वह भाषा है जो ईश्वर और इज़राइल पर लागू होती है। और अब यीशु स्वयं इस पर दावा करते हैं, मैं हूं के कथन इतने भिन्न हैं जो फिर से सुसमाचार में नहीं पाए जाते हैं। अब जब हम पूछते हैं, जब उन्होंने पूछा, जॉन के सुसमाचार के बारे में क्या अनोखा है, इसके अलावा मैंने अभी जॉन के सुसमाचार में पाए जाने वाले कई पाठों और सामग्रियों को देखा है जो सारांश में नहीं हैं, लेकिन जॉन की शिक्षा के बारे में क्या अनोखा है, जॉन यीशु को किस तरह से चित्रित करता है जो उससे भिन्न है, या कम से कम उस चीज पर अधिक जोर देता है जो आपको अन्य सुसमाचारों में नहीं मिली। पहला यह है कि जॉन इस मामले में अद्वितीय है कि वह ईसा मसीह के ईश्वरत्व पर जोर देता है। हम इसे अध्याय 1 में पहले ही देख चुके हैं। अंतर को अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताए बिना, दूसरे शब्दों में यह कहना गलत होगा कि सिनोप्टिक गॉस्पेल मैथ्यू मार्क और ल्यूक ने यह नहीं सोचा था कि यीशु भगवान थे, या उन्होंने उन्हें इस तरह चित्रित नहीं किया था। रास्ता, यह गलत होगा, लेकिन निश्चित रूप से जॉन खुले तौर पर और स्पष्ट रूप से यीशु को भगवान के रूप में पहचानता है। यीशु के ईश्वरत्व पर एक तना। फिर से अध्याय 1 पद 1 में, शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। बाद में यीशु पर ईशनिंदा का आरोप लगाया जाएगा क्योंकि वह खुद को भगवान के बराबर मानता है। तो कुछ बार यीशु कुछ कहेंगे और फरीसियों ने उन्हें मारने के लिए पत्थर उठा लिए क्योंकि वह ईशनिंदा कर रहे थे। वह खुद को भगवान के बराबर बता रहा है। बाद में यीशु के शिष्यों में से एक थॉमस, जो संदेह करता था, जब अंततः उसे समझ में आया तो उसने यीशु को मेरे भगवान और मेरे भगवान के रूप में संबोधित किया। और उससे भी आगे ऐसे स्थान भी हैं जो स्पष्ट हैं कि जॉन चाहता है कि आप यह समझें कि यीशु ही ईश्वर का रहस्योद्घाटन है। वह बिना कहे ही स्वयं ईश्वर है। उदाहरण के लिए क्रिसमस कहानी के जॉन के संस्करण अध्याय 1 श्लोक 14 पर वापस जाए तो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया और हमने उसकी महिमा देखी है। अब बहुत से लोग जो भूल सकते हैं वह यह है कि उस श्लोक में दो शब्द वास और महिमा पुराने नियम में कहीं और एक साथ पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने तंबू में या अपने मंदिर में रहता है। और अब वे दो शब्द यीशु पर लागू होते हैं, जैसे कि जॉन फिर से कह रहा हो यीशु के व्यक्तित्व में ईश्वर मौजूद है। तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति अब उसके लोगों के साथ यीशु मसीह के रूप में मौजूद है। तो यह भी यीशु के ईश्वरत्व का एक मजबूत बयान है। तथ्य यह है कि वह भगवान है, भले ही लेखक उस कविता में उसे भगवान नहीं कहता है। लेकिन स्पष्ट रूप से जॉन यीशु पर ईश्वर, यीशु के देवता के रूप में जोर देता है, और कभी कभी यही कारण है कि जॉन को अधिक धार्मिक सुसमाचार या आध्यात्मिक सुसमाचार के रूप में देखा जाता है। फिर यह कहना गलत होगा कि सिनोप्टिक्स मैथ्यू, मार्क और ल्यूक को भगवान के रूप में यीशु में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे थे, लेकिन जॉन उस ओर ध्यान आकर्षित करने और उस पर जोर देने की बात करता है। हम पहले ही शब्द या लोगों के बारे में बात कर चुके हैं, एक शीर्षक के रूप में जिसे जॉन यीशु के लिए उपयोग करता है, विशेष रूप से अध्याय 1 में। वह यीशु को कई बार लोगों के रूप में संदर्भित करता है। शुरुआत में शब्द शब्द था, शब्द भगवान के साथ था, शब्द ईश्वर था, शब्द देह बन गया आदि। अब फिर से जॉन ने उस शब्द का उपयोग किया होगा क्योंकि इसमें कई प्रतिध्वनियां थीं। यानी उन्होंने इसका इस्तेमाल इसलिए किया होगा क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को यह समझ में आया होगा। उदाहरण के लिए मैंने पहले ही कहा है कि पुराने नियम के ग्रीक अनुवाद में लोगो शब्द का उपयोग भगवान के भाषण में किया गया था। लोगो या शब्द का उपयोग केवल ईश्वर की वाणी और ईश्वर द्वारा स्वयं के रहस्योद्घाटन के लिए किया जा सकता है। तो इसलिए यीशु मसीह के लिए एक उपयुक्त शीर्षक। इसलिए हिब्रू दुनिया में जब लोगों ने इस शब्द के बारे में सुना तो उन्होंने भगवान के भाषण और भगवान के उनसे बात करने, प्रवचन, भगवान के भाषण और प्रवचन के बारे में सोचा होगा। दूसरी ओर ग्रीको-रोमन दुनिया में लोगो शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। यह बताना कठिन है कि लेखक के मन में यह कितना रहा होगा, लेकिन उदाहरण के लिए याद रखें कि सेमेस्टर की शुरुआत में हमने विभिन्न ग्रीको-रोमन धर्मों के बारे में बात की थी और उनमें से एक स्टोइकिज्म था। स्टोइसिज्म यह विश्वास था कि मूल रूप से सब कुछ निर्धारित था, प्रकृति और भौतिक दुनिया सब कुछ थी और जीवन की कुंजी संतुष्ट रहना और चीजें जिस तरह से थीं उसे स्वीकार करना, अत्यधिक भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होना और बस रहना था, संतुष्ट रहें। उनकी सोच का एक हिस्सा, स्टोइक सोच का एक हिस्सा यह था कि उनका मानना था कि भौतिक दुनिया लोगों द्वारा अनुप्राणित थी। लोगों उस जीवन सिद्धांत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था जो सारी सृष्टि को जीवंत बनाता है। और चाहे जॉन ऐसा सोच रहा हो या नहीं, जैसे कि यह कहना हो ठीक है यह स्टोइसिज्म का लोगो नहीं है, यीशु मसीह दुनिया की सच्ची रोशनी है जो दुनिया को भर देती है। वह इसके बारे में सोच रहा था या नहीं मुझे यकीन नहीं है, लेकिन साथ ही जॉन ने एक ऐसा शब्द चुना है जो यहूदी दुनिया में बल्कि ग्रीको-रोमन दुनिया में भी घर में होता। लेकिन फिर यह जॉन की एक विशिष्ट विशेषता है। आपको यह सिनोप्टिक्स में नहीं मिलेगा। आप उन्हें यीशु को लोगो या शब्द कहते हुए नहीं पाते हैं, लेकिन जॉन ऐसा करता है। तीसरा जोर यह है कि जॉन इस बात पर जोर देता है कि यीशु अपने अनुयायियों के लिए जो लाता और प्रदान करता है वह शाश्वत जीवन है। दिलचस्प बात यह है कि सिनोप्टिक्स में वह मुख्य शब्दावली क्या थी जिसका उपयोग सिनोप्टिक गॉस्पेल मैथ्यू, मार्क और ल्यूक यह वर्णन करने के लिए करते हैं कि यीशु क्या पेशकश करते हुए आए थे। हमने इस छोटे से वाक्यांश के बारे में बात करने में थोड़ा समय बिताया। जब यीशु पहली बार दृश्य में प्रकट होते हैं तो वे कहते हैं, पश्चाताप करो, क्योंकि क्या? वह लोगों को क्या पेशकश कर रहा है? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य और शासन। अब दिलचस्प बात यह है कि जबकि जॉन उस वाक्यांश का उपयोग करता है, ईश्वर का साम्राज्य या राज्य, जॉन यह वर्णन करने के लिए कि यीशु क्या पेशकश कर रहा है, अनंत जीवन शीर्षक का उपयोग करना पसंद करता है। फिर यह संभवतः पुराने नियम के जीवन पर वापस जाता है। अनंत जीवन नई सृष्टि का जीवन था, वह जीवन जिसका आनंद परमेश्वर के लोग नई सृष्टि में लेंगे, और अब यीशु अपने पाठकों को वही जीवन प्रदान करता है। शायद उन्हें संयोजित करने का तरीका यह होगा कि यीशु अनंत जीवन के रूप में जो प्रदान करते हैं वह जीवन है जिसका लोग आनंद लेंगे जब भगवान अपना शासन और अपना राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन फिर दिलचस्प बात यह है कि सारांश ईश्वर के राज्य पर जोर देते हैं। यूहन्ना अनंत जीवन पर जोर देता है जो यीशु ने दिया और लाया। जॉन के सुसमाचार में पवित्र आत्मा एक प्रमुख विषय है, विशेष रूप से अध्याय 14 से 17 में जॉन के विशिष्ट स्थानों में से एक में। याद रखें कि हमने यीशु ने कहा था, उनका विदाई प्रवचन, उनके शिष्यों से उनके अंतिम शब्द। यीशु ने वादा किया कि पवित्र आत्मा यीशु के स्थान पर आएगा। दूसरे शब्दों में, यीशु के जाने पर पवित्र आत्मा एक अर्थ में यीशु का स्थान ले लेगा। इसलिए यीशु ने अपने स्थान पर पवित्र आत्मा को लाने का वादा किया कि यीशु की अपने अनुयायियों के साथ निरंतर उपस्थिति पवित्र आत्मा के माध्यम से होगी। पवित्र आत्मा वह तरीका होगा जिससे यीशु अपने अनुयायियों को छोड़ने और स्वर्ग में चढ़ने के बाद उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो पवित्र आत्मा पर जोर दिया गया जिसे यीशु छोड़ देंगे। आप ल्यूक को भी पवित्र आत्मा पर जोर देते हुए पाते हैं, लेकिन विशेष रूप से जॉन करता है, खासकर अध्याय 14 से 16 में। जॉन में एक और महत्वपूर्ण जोर यह है कि जॉन इन विपरीतताओं को स्थापित करता है। दूसरे शब्दों में, एक द्वैतवाद है जो उसके पूरे सुसमाचार में चलता है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि जॉन एक तरह के सांप्रदायिक समूह को लिख रहे हों। यह एक ऐसा समूह है जहां यह विचार है कि चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि वे खुद को बहुत काले और सफेद शब्दों में देखते हैं, हम और वे। शायद जॉन का द्वैतवाद इस तथ्य को दर्शाता है कि चीजें एक तरह से विपरीत या बहुत काली और सफेद हैं, और जॉन के सुसमाचार में मतभेद शुरू करती हैं। लिए आप ऊपर और नीचे के बीच द्वैतवाद पाते हैं। आप जॉन को हमेशा उस बारे में बात करते हुए पाते हैं जो ऊपर से है या जो नीचे से है। प्रकाश और अंधकार बिल्कुल विपरीत हैं। दुनिया की विशेषता अंधकार है और यीशु और उनके अनुयायियों की विशेषता प्रकाश है। जीवन और मृत्यु स्पष्टतः विपरीत हैं। लेकिन फिर से आप इस द्वैतवाद, इन घोर विरोधाभासों को पूरे सुसमाचार में चलते हुए पाते हैं, जो फिर से जॉन के पाठकों के कारण हो सकता है। जॉन का सुसमाचार एक तरह के सांप्रदायिक माहौल में उत्पन्न हुआ होगा जहां पाठकों ने खुद को अपने दुश्मनों या अपने विरोधियों के साथ बहुत ही विरोधाभासों में देखा होगा, और फिर यह इस प्रकार की भाषा में प्रतिबिंबित हो सकता है। तो यह विशेष रूप से सिनोप्टिक्स की तुलना में जॉन के सुसमाचार के बारे में अलग या विशिष्ट है। यह इसे सुदृढ़ करने के लिए हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने उस प्रकार के भेद को पुष्ट करने या कम से कम प्रतिबिंबित करने के लिए लिखा हो जो वे सोच रहे हैं। जब हम पहले, दूसरे और तीसरे जॉन तक पहुंचेंगे, तो हम जॉन के सुसमाचार की ओर लौटेंगे, जोहानाइन पत्र बाद में आते हैं। हम वापस आएंगे और पूछेंगे कि उनका जॉन के सुसमाचार से क्या संबंध है। तो जॉन अन्य सिनोप्टिक्स से इतना अलग क्यों है? मेरा मतलब है, बस थोड़ा सा सोचो। क्या कोई किसी कारण के बारे में सोच सकता है? फिर से आप मैथ्यू, मार्क और ल्यूक को पढ़ते हैं और कभी कभी आपको देजा वू का एहसास होता है। मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। दूसरे शब्दों में एक द्वैतवाद है जो उसके पूरे सुसमाचार में चलता है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि जॉन एक तरह के सांप्रदायिक समूह को लिख रहे हों। यह एक ऐसा समूह है जहां यह विचार है कि चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि वे खुद को बहुत काले और सफेद शब्दों में देखते हैं, हम और वे। शायद जॉन का द्वैतवाद इस तरह। मैंने यह सामग्री देखी है। इनमें से कुछ चीजें तीनों सुसमाचारों में दोहराई जाती हैं। फिर आप जॉन के पास पहुंचते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप कुछ और पढ़ रहे हैं। यहां तक कि जब आप जॉन के पास पहुंचते हैं तो यीशु ने जिस तरह से सिखाया और बोला था उसमें से कुछ शब्दावली भी अचानक गायब हो जाती है। बस अपने दिमाग से सोचिए, क्या कारण हो सकते हैं कि जॉन अन्य सिनोप्टिक गॉस्पेल से इतना अलग है? मेरा मतलब है, क्या वह उन्हें नहीं जानता था, या जॉन एक प्रकार का पाखंडी है? वह अपने आप चला जाएगा। ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से जॉन इतना विशिष्ट और अलग दिखता है? ठीक है, यह बहुत बाद में लिखा गया। कुछ लोग जॉन को पहली शताब्दी के अंत में, जैसे कि 90 ईस्वी में, दूसरे शब्दों में कहते हैं, या तो जॉन का सुसमाचार या प्रकाशित वाक्य नए नियम की लिखी गई अंतिम पुस्तक होने की सबसे अच्छी संभावना है। तो आप सही हैं। शायद बहुत बाद की किताब होने के कारण यह एक बहुत ही अलग स्थिति, बहुत अलग दर्शकों और परिस्थितियों के समूह को संबोधित कर सकती है, और यही कारण है कि जॉन ने अन्य सिनोप्टिक गॉस्पेल से कुछ अलग लिखा है। हो सकता है कि जॉन ने अन्य तीन सुसमाचारों को मान लिया हो या उनमें से एक को सुसमाचार का सामान्य ज्ञान हो और अब वह कुछ अलग लिखने जा रहा है। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है, यह बताना कठिन है कि जॉन तीन सिनोप्टिक्स को जानता था और वह उन तीनों से बहुत अलग कुछ लिखना चाहता था। तो मुझे लगता है कि आप सही हैं। जॉन शायद सुसमाचार का सामान्य ज्ञान मानता है, शायद सारांश का भी, और अब वह कुछ बहुत अलग लिखने जा रहा है। दूसरी बात यह भी है, याद रखें कि हमने इन सुझावों के साथ साथ वह भी कहा था जो भाषा में बहुत सारे अंतर को समझा सकता है। याद रखें, हमने कहा था कि हमने कुछ समय पहले न्यू टेस्टामेंट में विभिन्न साहित्यिक प्रकारों के बारे में बात की थी। वहां कथा और पत्री और सर्वनाश है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। कथा के बारे में हमने जो बातें कही, उनमें से एक जो हमारे अपने समय से बहुत बहुत अलग है, वह यह है कि जब पहली शताब्दी में किसी और के भाषण को रिकॉर्ड करने की बात आई, तो वास्तव में उस व्यक्ति के सटीक शब्दों को संरक्षित करने का कोई प्रयास या इच्छा नहीं थी। वास्तव में, फिर से, यदि यीशु ने बड़े पैमाने पर अरामी भाषा में बात की थी, तो हमारे पास सटीक शब्दांकन नहीं है, क्योंकि यीशु ने सुसमाचार में जो कहा था उसके ग्रीक अनुवाद हमारे पास हैं। लेकिन इससे भी अधिक, पहली सदी के लेखकों की रुचि सटीक शब्दों को संरक्षित करने के बजाय किसी के द्वारा कही गई बातों के जोर और सार को संक्षेप में प्रस्तुत करने और संरक्षित करने में थी। इसलिए आप अक्सर उन्हें किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों और शब्दावली में सारांशित करते हुए पाते हैं। तो क्या यह संभव है कि जॉन के सुसमाचार में कई बार हम पाते हैं कि शायद यह जॉन का अपनी शैली में, उसकी अपनी शब्दावली में सारांश है जो यीशु ने कहा था? एक दिलचस्प बात, जब आपने जॉन अध्याय 3 पढ़ा तो हमने यीशु और निकुदेमुस के बारे में बात की। जब आप जॉन अध्याय 3 पढ़ते हैं तो यीशु निकोडेमस के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्द ही यीशु इस एक आलाप की तरह ही सब कुछ शुरू कर देते हैं। और समस्या यह है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यीशु कहां समाप्त होता है, यीशु कहां बोलना बंद करता है और जॉन कहां से बोलता है, और यीशु ने जो कहा उस पर टिप्पणी करना शुरू कर देता है। यह स्पष्ट नहीं है, और फिर इसका कारण यह है कि फिर से जॉन अपनी भाषा, अपनी शैली, अपनी शब्दावली में अपना सारांश प्रदान कर रहा है जो यीशु ने कहा था, उसका सटीक सारांश। और इसमें से बहुत कुछ फिर से जॉन के सिनोप्टिक्स, विशेष रूप से उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के बीच अंतर के कारण हो सकता है। फिर से जॉन ऐसी भाषा का उपयोग कर सकता है जो उन धार्मिक विचारों और विषयों को सामने लाती है जिन पर जॉन यीशु द्वारा सिखाई गई बातों पर जोर देना चाहता है। तो उन कारणों के अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। उन कारणों से जॉन अन्य 3 गॉस्पेल से बहुत अलग कुछ लिखता प्रतीत होता है। फिर यदि कोई इसे आगे बढ़ाने में रुचि रखता है तो मैं क्रेग ब्लॉमबर्ग की एक और पुस्तक की अनुशंसा करता हूँ। मैंने सिनोप्टिक गॉस्पेल्स, गॉस्पेल की ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर उनकी एक पुस्तक की अनुशंसा की। उन्होंने द हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी ऑफ जॉन्स गॉस्पेल नामक एक और पुस्तक लिखी है। वह जो करने का प्रयास करता है वह यह प्रदर्शित करना है कि मैंने अभी क्या कहा है। जॉन और सिनोप्टिक्स के बीच मतभेदों का मतलब यह नहीं है कि जॉन तथ्यों के साथ तेजी से और ढीला खेल रहा था और ऐतिहासिक रूप से गलत और अविश्वसनीय था, लेकिन वह यह प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि इसका कारण है जॉन के गॉस्पेल को मैथ्यू, मार्क और ल्यूक के सारांश के साथ ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय बनाने के लिए। इसलिए यदि आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने आपको क्रेग ब्लॉमबर्ग की द हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी ऑफ जॉन्स गॉस्पेल पर आपके नोट्स में जानकारी दी है। ठीक है, मैं वास्तव में जॉन के गॉस्पेल के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। फिर से मैं सिर्फ इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जॉन के कुछ जोर या कुछ पाठ और अनुभाग क्या हैं जो उनके लिए विशिष्ट और अद्वितीय हैं, जो आपको अन्य सिनोप्टिक्स में नहीं मिलते हैं और एक तरह से आपको इसका एहसास दिलाते हैं। जॉन अपने संपूर्ण सुसमाचार में किस बात पर जोर देता प्रतीत होता है? अब आगे बढ़ने से पहले मैं दृष्टांतों के बारे में बहुत संक्षेप में बात करना चाहता हूँ कि वे क्या हैं और हम उन्हें कैसे पढ़ते हैं। लेकिन जॉन के सुसमाचार पर अब तक कोई प्रश्न है? तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? और वैसे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपको 4 सुसमाचारों, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन की तुलना और तुलना करने में सक्षम बनाने के लिए होते हैं। 4 सुसमाचारों में क्या विशिष्ट है? उनके विषयों में क्या है? वे किस तरह से संरचित हैं? अगर हम इसके बारे में बात करें या जिस तरह से वे यीशु को चित्रित करते हैं उसमें क्या विशिष्ट है? केवल एक चीज जिसे आपको याद रखने की आवश्यकता है वह मूल रूप से अध्याय हैं। उदाहरण के लिए मैं विशेष रूप से यही इस स्लाइड के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा दर्शन किसी शहर की कल्पना का उपयोग करना है। यदि आप ब्लॉक ढूंढ सकते हैं तो संभवतः आप घर ढूंढ सकते हैं। इसलिए मैं मान रहा हूं कि यदि आपके पास बाइबल है और आपको अध्याय मिल सकता है तो आप शायद कविता भी पा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुझे उन मुख्य अध्यायों को प्राप्त करने में अधिक रुचि है जिनमें चीजें पाई जाती हैं। इसलिए मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि कौन सा श्लोक, कौन सा सटीक अध्याय और श्लोक है जहां यह पाया जाता है, लेकिन मैं यह पूछ सकता हूँ आपसे ये अध्याय पूछें। मैं आपसे यह पहचानने के लिए कह सकता हूँ कि इन अध्यायों में क्या पाया गया है, या मैं आपसे यह पहचानने के लिए कह सकता हूँ कि ये खंड जॉन में किन अध्यायों को शामिल करते हैं। और अन्य सुसमाचारों के साथ भी ऐसा ही है। मैं मुख्य रूप से व्यापक अध्यायों पर ध्यान केंद्रित करूंगा, न कि विशिष्ट छंदों पर। सुसमाचारों में यीशु द्वारा सिखाए गए विशिष्ट तरीकों में से एक दृष्टांतों के माध्यम से था, विशेष रूप से ल्यूक और मैथ्यू में, लेकिन अन्य सुसमाचारों में भी। जॉन विशेष रूप से यीशु द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की प्रतीकात्मक कल्पनाओं और भाषण के अलंकारों से भरा हुआ है, लेकिन मैं दृष्टांतों के बारे में और हम उन्हें कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। चूंकि वे यीशु की शिक्षा के इतने प्रमुख साधन हैं, तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, हमें उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, और यह इस बात को समझने पर निर्भर करता है कि यीशु बोलते समय किस प्रकार के साहित्य का उपयोग कर रहे हैं। दृष्टांतों के बारे में कहने वाली पहली बात यह है कि दृष्टांत यीशु के लिए अद्वितीय नहीं थे। उन्होंने दृष्टांतों का आविष्कार नहीं किया। दृष्टांत रब्बियों की शिक्षा का मुख्य हिस्सा थे। तो यीशु शिक्षा देने के एक सामान्य तरीके का पालन कर रहे थे, जिसका अधिकांश यहूदी रब्बियों ने पालन किया होगा। अब यीशु उनके साथ क्या करते हैं, या जो संदेश वह सिखाते हैं, वह बहुत अनोखा है, लेकिन यीशु के दृष्टांत और यहाँ तक कि भेड़ या भंडारी या प्रबंधक या स्वामी के दृष्टांतों में पाई जाने वाली कल्पना भी कि एक पौधा एक सरसों का बीज, अर्थात यीशु के लिए अद्वितीय नहीं। यह सामान्य कल्पना थी जिसे रब्बियों ने अपने दृष्टांतों में इस्तेमाल किया था। हमारे पास रब्बियों द्वारा सिखाए गए कुछ दृष्टांतों के अंग्रेजी अनुवाद हैं, और फिर वे यीशु की शिक्षाओं के समान हैं, कम से कम रूप में। फिर जहां अंतर है, वह संदेश है जो यीशु ने सिखाया और दृष्टांतों के साथ उसने क्या किया। लेकिन सबसे पहले यीशु के दृष्टांतों की व्याख्या करते समय यीशु के दृष्टांतों को इन बहुत विस्तृत रूपकों के रूप में मानना आम बात थी, और इससे मेरा मतलब है कि इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक रूपक अर्थ खोजने के लिए दृष्टांत के हर छोटे से विवरण का अध्ययन करना। तो जब भी आप यीशु के दृष्टांत पढ़ते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यीशु क्या कर रहे हैं और मुझे इसे कैसे लागू करना चाहिए? ठीक है, आप पढ़ते हैं और सभी विवरणों का कुछ दूसरे स्तर का अर्थ होता है, अर्थात उनका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। तो उदाहरण के लिए यहाँ से एक उदाहरण दिया गया है। मुझे लगता है कि यह सेंट ऑगस्टीन था, जो चौथी शताब्दी के आसपास के शुरुआती चर्च फादरों में से एक था। यह एक अच्छे सामरी का दृष्टांत है। आपको कहानी याद है, एक आदमी जेरिको जाता है, उसे कुछ लुटेरों ने पीटा है, उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया गया है। एक लेवी याजक चला जाता है और कुछ नहीं करता। अंत में एक सामरी आता है और उसके घावों पर पट्टी बांधता है, उसे एक सराय में ले जाता है और उसके ठीक होने तक स्वेच्छा से भुगतान करता है। और यहाँ बताया गया है कि सेंट ऑगस्टीन, एक बहुत ही प्रारंभिक चर्च पिता, ने क्या कहा, उन्होंने इसकी व्याख्या कैसे की। उसने सोचा कि जब यह कहता है कि एक निश्चित व्यक्ति जेरिको गया, तो वह व्यक्ति पुराने नियम के एडम के लिए खड़ा था। यरूशलेम शांति के शहर का प्रतीक है। तो यरूशलेम का तात्पर्य कहीं शाब्दिक शहर से नहीं था, इसका तात्पर्य एक तरह से शांति के शहर से था, एक तरह से इसका अधिक आध्यात्मिक अनुप्रयोग था। जेरिको शहर, जहां यह आदमी जा रहा था, एडम की मृत्यु का प्रतीक था। फिर आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे परीक्षण के दौरान यह नहीं पूछने जा रहा हूं। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि लोग परंपरागत रूप से दृष्टांतों की व्याख्या कैसे करते हैं। जिन चोरों ने इस आदमी को पीटा और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया, वे स्वर्गदूतों, शैतान और उसके राक्षसों, उसके स्वर्गदूतों का प्रतीक थे। दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्होंने उसे पीटा, इसका मतलब है कि उन्होंने उसे पाप करने के लिए प्रेरित किया। तो आप देख सकते हैं कि ऑगस्टीन इस तरह की व्याख्या स्तर पर नहीं कर रहा है, वस्तुतः वह शब्दों के पीछे गहरे आध्यात्मिक अर्थ की तलाश कर रहा है। तथ्य यह है कि उन्होंने उसे आधा मरा हुआ छोड़ दिया, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मर गया, जैसे आदम ने पाप किया था। आप अब तक देख सकते हैं कि इसमें से बहुत सी चीजों में उत्पत्ति 1-3 के साथ समानताएं हैं। याजक और लेवी पुराने नियम पूरे पुराने नियम का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामरी का अर्थ मसीह है। यह तो दिलचस्प है। सामरी लोग, जिन्हें फिर से पहली सदी के अधिकांश यहूदियों ने घृणित और अछूत और सच्चे यहूदियों की तरह नहीं देखा होगा, और अब शायद सेंट ऑगस्टाइन ने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्होंने सामरी को मसीह के रूप में पहचाना, जो स्वाभाविक है। मेरा मतलब है वह स्पष्ट व्यक्ति है जो दृश्य में नायक के रूप में उभरेगा। तथ्य यह है कि उसने अपने घावों पर तेल डाला, तेल आशा और उस आराम का प्रतीक है जो मसीह में आशा लाता है। जिस गधे पर उसने उसे बिठाया था, आप देख रहे हैं कि ऑगस्टीन क्या कर रहा है। दृष्टांत में हर छोटी चीज का कुछ आध्यात्मिक महत्व है। तो गधा यीशु के अवतार का प्रतीक है। इसका मतलब यह तथ्य है कि जॉन 1-14 वह शब्द जो ईश्वर है अब देहधारी हो गया, उसका अवतार इस तथ्य का संदर्भ देता है कि उसने मानव मांस, मानव स्वभाव, भौतिक शरीर धारण किया। सराय चर्च को संदर्भित करता है, और वह सराय जहां ईसा मसीह उसे पीटे हुए व्यक्ति को ले गए थे, चर्च को संदर्भित करता है। मुझे नहीं पता कि कौन सा चर्च है, मुझे लगता है कि शायद यह एक सार्वभौमिक चर्च है। इस व्यक्ति की देखभाल के लिए उसने सराय के मालिक को भुगतान करने के लिए जो धन देने की पेशकश की, वह आने वाले जीवन, अनंत जीवन को संदर्भित करता है। और सराय का मालिक प्रेरित पौलुस था। मुझे नहीं पता कि उसे वह कैसे मिला, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑगस्टीन क्या कर रहा था। और यह था, हालांकि वह चर्च की शुरुआती शताब्दियों में ऐसा कर रहा था, यह वह दृष्टिकोण है जो 19वीं शताब्दी तक हमारे दृष्टांतों को पढ़ने के तरीके पर हावी था। तो सदियों तक इसका बोलबाला रहा। जो कोई भी इस दृष्टांत को पढ़ेगा वह ऐसा करेगा। आप दृष्टांत को देखें और सभी विवरण लें और पुराने और नए नियम में किसी अन्य चीज के साथ आध्यात्मिक रूप से कुछ पत्राचार खोजें, और फिर प्रत्येक अंतिम विवरण। उन्होंने ऐसा किया। हमने उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के बारे में थोड़ी बात की। उन्होंने वैसा ही किया। जिस बछड़े का वध किया गया था, उसके पैरों में पहनी जाने वाली चप्पलें, वस्त्र, अंगूठी, उन सभी का आध्यात्मिक, कुछ रूपकात्मक आध्यात्मिक अर्थ था। और फिर 19वीं सदी तक दृष्टांतों के साथ इसी तरह व्यवहार किया जाता था। जब एडोल्फ जुलिचर नाम के एक जर्मन विद्वान ने फैसला किया कि यह दृष्टांतों को पढ़ने का एक अच्छा तरीका नहीं है, और कई कारणों से उसने जो कहा, नहीं नहीं, ऑगस्टीन और चर्च के पिता और चर्च के इतिहास ने इसे गलत पाया है। दृष्टांत विस्तृत रूपक नहीं है। दृष्टांत ऐसी कहानियां हैं जो केवल एक मुख्य बिंदु और केवल एक मुख्य बिंदु को संप्रेषित करती हैं। इसलिए दृष्टांत की व्याख्या करने में आपका काम इसे एक रूपक की तरह पढ़ना और यह पता लगाना नहीं है कि रूपक और आध्यात्मिक रूप से सब कुछ क्या संदर्भित करता है, बल्कि आपका काम यह पता लगाना है कि यह दृष्टांत एक मुख्य बिंदु क्या सिखाता है। यही प्रमुख दृष्टिकोण है। उठाएं, लाइब्रेरी में जाएं और बाइबल कैसे पढ़े, इस पर लगभग कोई भी किताब उठाएं और दृष्टांतों के अनुभाग में जाएं और यह आपको बताएगा कि आपको एक मुख्य बिंदु क्या खोजना है। दृष्टांतों का उद्देश्य एक ही मुख्य बात सिखाना था। यह एक जर्मन उदारवादी विद्वान एडोल्फ जुलिचर की ओर से आया था और वह इस बात पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि ऑगस्टीन और अन्य लोगों ने दृष्टांतों में इन सभी रूपक विवरणों को खोजने के लिए सदियों से लगभग मनमाने ढंग से दृष्टांतों की व्याख्या की थी। और उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, दृष्टांत केवल एक मुख्य बात बताते हैं। जुलिचर ने यही कहा। और फिर यह एक तरह से आम सहमति बन गई है। हालांकि बहुत सी चीजों के साथ कभी कभी यह पेंडुलम एक चरम तक झूलना पसंद करता है और अंतः केंद्र पर वापस आ जाता है। एक दृष्टिकोण जो आज उभरना शुरू हो रहा है वह यह है कि इससे जो बात उभर कर सामने आई है, इससे पहले कि मैं पेंडुलम पर वापस आऊं, दुभाषियों का लक्ष्य एक मुख्य बिंदु ढूंढना है जो संप्रेषित किया गया है। वह मुख्य बिंदु क्या था जिसे यीशु दृष्टांतों में बताने का प्रयास कर रहे थे? अब फिर से पेंडुलम ने मध्यस्थता की स्थिति खोजने के लिए झूलना शुरू कर दिया है। और वह यह है कि यह समझना कि दृष्टांत वास्तव में संक्षिप्त रूपक आख्यान है, वस्तुतः काल्पनिक आख्यान। दृष्टांत अधिकांश दृष्टांत फिर भी, हालांकि वे वास्तविक जीवन में असभ्य हैं, वे कहानियां नहीं हैं, इस तथ्य में सच्ची कहानियां हैं कि वे वास्तव में घटित हुए हैं। वे कहानियां हैं जो जीवन पर आधारित हैं, लेकिन वे कहानियां जिन्हें यीशु संवाद करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसा कि रब्बियों ने किया था, भगवान के राज्य के बारे में कुछ बताने के लिए सामान्य कहानियां हैं, इसीलिए यीशु उनका उपयोग करते हैं। लेकिन अब यह माना गया है कि दृष्टांत मूल रूप से रूपक हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह सेंट ऑगस्टीन और अन्य लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया। ऐसा नहीं है कि हर छोटी छोटी बात का कोई रूपक अर्थ हो, लेकिन इसके बजाय दृष्टांतों के केवल प्रमुख पात्र ही रूपक अर्थ रखते हैं। संदर्भ में अर्थ यीशु की शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए, न कि वह जो मैं चर्च परंपरा और शेष पुराने नए नियम से प्राप्त कर सकता हूं। इसे प्रतिबिंबित करना चाहिए कि यीशु इस संदर्भ में क्या सिखा रहे थे। जब मैं उस संदर्भ से शुरू करता हूं, तो आशा करता हूं कि हर विवरण का नहीं बल्कि दृष्टांतों के प्रमुख पात्रों, प्रमुख घटनाओं और पात्रों का रूपक अर्थ क्या था। वास्तव में वापस जाए और मैथ्यू में कुछ पढ़े, विशेषकर अध्याय 13 में। ध्यान दें कि यीशु ने दृष्टांत सुनाने के बाद शुक्र है यीशु की व्याख्या कैसे की। बीज या बोने वाले का दृष्टांत याद है? एक बोने वाला खेत में गया और बीज बिखेरने लगा। उसमें से कुछ कठोर भूमि पर गिर गया और पक्षियों ने आकर उसे इकट्ठा कर लिया। कुछ जमीन पर गिर गए और ऊंटकटारों ने बड़े होकर उसे दबा दिया। परंतु कुछ अच्छी भूमि में गिरे और उनमें फल लगे। और फिर यीशु हमारे लिए उस दृष्टांत की व्याख्या करते हैं और वह ऐसा रूपक के रूप में करते हैं। वह उस दृष्टांत के मुख्य भाग, बोने वाले बीज और बीज खाने वाले पक्षियों को भी लेता है और वह उन्हें ईश्वर के राज्य से संबंधित एक रूपक व्याख्या देता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यह ल्यूक 15 उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, जहां स्पष्ट रूप से इस दृष्टांत में तीन मुख्य पात्र हैं, पिता, सबसे छोटा उड़ाऊ पुत्र। और हमने पिछली कक्षा में देखा, जब हमने ल्यूक के बारे में बात की, हमने छोटे बेटे के बारे में भी एक चरित्र के रूप में बात की। इसलिए मुझे संदेह होगा कि इस दृष्टांत के तीन अर्थ होंगे या तीन संदेश होंगे, इनमें से प्रत्येक मुख्य पात्र के साथ एक जुड़ा होगा। तो उदाहरण के लिए पिता के बारे में क्या? पिता, मुझे नहीं लगता कि कोई असहमत होगा, पिता स्पष्ट रूप से भगवान का प्रतीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान हर मामले में इस पिता की तरह है, लेकिन वह इस मायने में पिता की तरह है कि पिता किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए खुद को अपमानित करता है जिसने उसके साथ गलत और अपमानजनक व्यवहार किया है। उसी तरह पिता प्रतीकात्मक रूप से ईश्वर का प्रतीक है जो पश्चाताप में उसके पास आने वाले पापियों को स्वीकार करता है। तो स्पष्ट रूप से उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में पिता का अर्थ ईश्वर के लिए खड़ा होना है। हम पहले ही कह चुके हैं कि छोटा बेटा स्पष्ट रूप से उस पापी का प्रतीक है जो क्षमा के लिए ईश्वर की ओर मुड़ता है, और फिर बड़ा बेटा, हमने कहा, किसी से मेल खाता है। खासकर यीशु के समय में यह फरीसी थे। याद रखें, लूक 15 में जहां यह दृष्टांत मिलता है, यीशु उन फरीसियों को संबोधित कर रहे हैं जो उन पर पापियों और कर वसूलने वालों जैसे लोगों के साथ संबंध रखने का आरोप लगा रहे हैं। और इसलिए बड़ा बेटा जो ईर्ष्यालु है क्योंकि पिता छोटे बेटे के लिए एक पार्टी का आयोजन करता है, बड़ा बेटा किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतीक या प्रतिनिधित्व करता है जिसे खुशी में प्रतिक्रिया देनी चाहिए जब भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जो इसके लायक नहीं है। तो यह तथ्य कि भगवान पश्चाताप करने वाले पापियों को क्षमा प्रदान करते हैं भले ही वे उस क्षमा के लायक नहीं हैं, इससे भगवान के लोगों में खुशी की प्रतिक्रिया पैदा होनी चाहिए। और इसलिए बड़ा बेटा फिर से उस व्यक्ति से मेल खाता है जिसे खुशी के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए जब भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जो इनकर संग्रहकर्ताओं और पापियों और समाज से बहिष्कृत लोगों की तरह इसके लायक नहीं है। फिर भी जैसा कि हमने देखा, बेटे की अंतिम प्रतिक्रिया खुली हुई है। दृष्टांत हमें यह नहीं बताता कि इसका अंत कैसे होता है। अब जब आप दृष्टांत पढ़ते हैं तो दृष्टांत में नौकर या सुअरों या उस भोजन का कोई प्रतीकात्मक अर्थ नहीं है जो बेटा सुअरों को खिला रहा था। उसकी उंगली पर अंगूठी, लबादे, मोटे बछड़े को मारने का कोई प्रतीकात्मक महत्व नहीं है। कहानी को कारगर बनाने के लिए ये सभी आवश्यक हैं, और दृष्टांत ऐसे ही होते हैं। जानकारी की एक निश्चित मात्रा है जो दृष्टांत में रंग भर देती है क्योंकि कहानियों को इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन आप देखिए, दृष्टांतों के मुख्य अलंकार ही रूपक अलंकारिक अर्थ प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूं, जब आप यीशु के दृष्टांतों को पढ़ते हैं तो यह निर्धारित करें कि मुख्य व्यक्ति कौन है, और फिर यीशु की शिक्षा के संदर्भ में सबसे अधिक संभावना है कि वे क्या कह रहे हैं, उनका आध्यात्मिक या रूपक अर्थ या महत्व क्या है। ठीक है, फिर शुक्रवार को हम सभी सुसमाचारों की एक दूसरे से तुलना करके अपनी चर्चा समाप्त करेंगे। यह डॉक्टर डेव मैथ्यूसन जॉन और दृष्टांतों पर न्यू टेस्टामेंट इतिहास और साहित्य व्याख्यान 11 प्रस्तुत आए हैं।